हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 14। मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्या तामसितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारत। बोलना चाहेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। एक बार और कोई पढ़ सकते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो नित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शः इंद्रिय विषय तो केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख तथा दुख दाह देने वाले आगम आना अपायिनः जाना अनित्याः क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरत वंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इससे पहले वाले आप श्लोक को जानते होंगे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं धीरस्तत्र न मोहयति। बचपन से हम लोग बड़े हो रहे हैं, अब बड़े तो नहीं हो रहे हैं, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, तो धीर व्यक्ति मोहित नहीं होगा। तो अर्जुन प्रश्न कर सकते हैं, भाई लेकिन इस जगत में तो हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं ना, बचपन से लेकर बड़े तक मोह होना तो स्वाभाविक है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर की चेतना में रहते हुए भी कैसे हम अभ्यास करें जिसके द्वारा इस शरीर की चेतना से हम ऊपर उठ सकें। और इसका इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस श्लोक में। भगवान जिस स्थिति को बता रहे हैं कि हमको मोहित नहीं होना चाहिए, उस श्लोक को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर जाए, ये श्लोक उसके ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर हम अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं, तो उस प्रकार का अभ्यास आवश्यक है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे। तो अब आप विचार करें, कोई वस्तु हम देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, या फिर आज आप लोग जैसे प्रताप प्रसाद वितरण कर रहे थे तो आपको अनुभव होगा कि मान लीजिए 15-13 आइटम है, एक व्यक्ति दूसरे एक आइटम के लिए बोलता है ये मुझे दे दो, और दूसरा व्यक्ति कहता है ये मेरे को मत दो। तो यानी कि वो विषय तो वही है, आप पूड़ी लीजिए, चावल लीजिए, दाल लीजिए, सब बराबर है, लेकिन उसके मन के अनुसार उसको वो इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रेट समझते हैं उसको, ट्रांसलेट कर रहा है कि ये चीज अच्छी, ये चीज बुरी है। और इसमें बड़ा सुंदर बात है, अच्छा बुरा का संस्कार पहले संस्कारों को मैच करा करके हम बोलते, जैसे किसी बंगाली को बोलेंगे सुक्ता बना है तो बड़े खुश हो जाएंगे, और किसी नॉर्थ इंडियन को बोलेंगे सुक्ता बना है जो कि कड़वा होता, कहते हैं ये क्यों बना है। अच्छा दूसरा क्या है, तो ये एक तो हमारा मन सुख दुख का अनुभव करता है, और इस सुख और दुख क्या होता है, अनुकूल वृत्तियां और प्रतिकूल वृत्ति को हम सुख और दुख बोलते हैं। इस बचपन से लेकर के मतलब मरने तक या उससे पहले के भी हमारे जो संस्कार हैं उसकी वजह से हमारा मन में एक एक प्रकार से बहने की वृत्ति हो गई है, मतलब एक प्रकार से चलता है हमारा मन, कुछ चीजों को अच्छा मानता है कुछ चीजों को बुरा मानता है। तो जब उस पैटर्न के हिसाब से हमें कुछ इंद्रिय विषय मिलता है तो हम बड़े सुखी हो जाते, और इसके विपरीत कोई पैटर्न होता है तो हम दुखी हो जाते। ये बहुत अद्भुत है, और भगवान यहां बोल रहे हैं कि इस इल्यूजन से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। आप आगे आ सकते हैं, कैलाश पर्वत मत बैठिए, वृंदावन में आ जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई देखिए अर्जुन ने तो गीता सुनी, और हम ये बोलते हैं कि अर्जुन जो है वो बहुत श्रेष्ठ स्टूडेंट है भगवद गीता के, तो जब अभिमन्यु मरा तो रोए क्यों, भगवान तो कह रहे हैं टॉलरेट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉलरेट करने का अर्थ क्या है, और इस चीज को इसी बात को प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। ये हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं श्लोक को ले रहा हूं। टॉलरेट करने का अर्थ है कि सुख और दुख का अनुभव आप करोगे, लेकिन उसकी वजह से भक्ति को छोड़ना ये बेवकूफी। जनरली इसे कहते हैं, मैं इंग्लिश शब्द भूल रहा हूं, कि मैं अगर कुछ भजन कर रहा हूं किसी व्यक्ति का किसी देवता का तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन होती है। प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी का मतलब समझते हैं धन धान्य आए, भौतिक रूप से मैं बहुत बढ़िया हो जाऊं, तो मैं भगवत भजन कर रहा हूं या किसी देवता का भी भजन कर रहा हूं तो मैं इसलिए करूं ताकि मेरा भौतिक लाभ मुझे प्राप्त हो जाए, सब कुछ बढ़िया चलना चाहिए। और ये इस भौतिक जगत में असंभव है। कोई धन बहुत धनी व्यक्ति भी होगा उसको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट आएगा, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक कष्ट आएंगे, वो भी उतना ही घिरा है इन दुखों से जितना कि वृक्ष वाला, ज्यादा अंतर नहीं है। तो भगवान यहां बोल रहे हैं कि जैसे हम, हाँ तो हमें अपने जो कर्तव्य हैं आध्यात्मिक कर्तव्य इवन भौतिक कर्तव्य उसे करते रहना चाहिए। और आप देखे हुए कि भौतिक कर्तव्य करने में हम इस श्लोक को बहुत बढ़िया से अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, एक बार एक व्यक्ति मुझसे 5,000 रुपए लेने के लिए जो पेमेंट ड्यू था, एक गौशाला की बात है, अलीगढ़ से भीगता हुआ मेरे पास पैसे लेने के लिए, हमको बोला जाए कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाइए, तो कहेंगे अरे पूरी बरसात पूरी कहां बरसात में भेज रहे हैं, कितना कम से कम 150 किलोमीटर या 140 किलोमीटर दूर, वहां से वो व्यक्ति भीगता हुआ, दो लोग आए थे 5,000 रुपए लेने के लिए। तो आप देखेंगे जब हम इंद्रिय विषयों के भोग के पीछे लगते हैं तो वो हमको ट्रेनिंग देते हैं, जबरदस्ती ऐसा कार्य कराते हैं, सुख थोड़े से सुख के लिए या कुछ दुख से निवृत्ति करने के लिए आपको टॉलरेट करना पड़ता है वो कष्ट। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, और जीवन में हम अनुभव भी कर रहे हैं। जैसे मेरे एक रिश्तेदार हैं तो वो काम करते, उन्हें खुद ही बताया था, मैं उनके घर पे गया था, वो बहुत व्यस्त है, क्या बात है, तो कह रहे कि हमारा बॉयलर जो प्लांट है वो ब्रेक डाउन हो गया है, 40 घंटे उनको बिना सोए मतलब खाए पिए, पता नहीं कैसे खा रहे होंगे पी रहे होंगे, लेकिन बिना सोए वहां पे खड़े रह करके उसको सही करवाना पड़ा 40 घंटे। हम लोग कल 12 बजे 1 बजे सोए, जन्माष्टमी में तो आज सब फ्लैट हो गए ना, 40 घंटे आप सोच सकते हैं, 40 घंटे हम तो सोच भी नहीं सकते, 40 घंटे नॉन स्टॉप खड़े रह करके वहां बॉयलर, नहीं मैं अरे प्राउडली नहीं बोलते, दुखी होते हैं वो, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है और करते हैं, isn't it? या जैसे मान लीजिए कोई एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि रोड बना दी गई एवरेस्ट पे ऊपर से चढ़ने की, घूम के आगे टहल के आगे मॉर्निंग वॉक करते हो, कितना सुख और दुख का अनुभव करते हो, बल्कि दुख ही अनुभव करते हैं मुझसे। तो मैं ये कह रहा हूं सिंपल सी बात कि इस जगत में, मैं नहीं भगवान कह रहे हैं, अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। तो अर्जुन के उदाहरण पर अगर विचार करें, अर्जुन के बेटे मरे, उन्हें दुख हुआ और उनके लिए रोना स्वाभाविक था, लेकिन क्या उन्हें युद्ध करना छोड़ दिया, नहीं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये भी सोचना चाहिए, जब अर्जुन है, युधिष्ठिर है, जब उनको घाव लगते थे तो सहन करने का मतलब ये नहीं कि बाण लगा है तो बाण लगा रहने दे। उनके शरीर में भी जो भक्तों के कष्ट आते हैं इसका मतलब नहीं आप दवा नहीं खाएंगे, ये शरीर को ठीक नहीं रखेंगे भक्ति के लिए, लेकिन आपका जो नाम जप है या जो भी अपने व्रत लिए हैं उसे में करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि समाज में कुछ लोगों ने बोला आपको डिस्करेज किया भक्ति करने के लिए, और ये होगा भी, अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको लोग डिस्करेज करेंगे। इस बारे में बहुत मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आप दुर्गा जी की पूजा करिए, शिव जी की पूजा करिए, घर वाले कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, किसी भी देवता की मत करिए। अच्छा कृष्ण की भी करोगे तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन इस्कॉन के द्वारा जुड़ करके हरे कृष्णा करोगे तो ऑब्जेक्शन करेंगे। तो अच्छा आप तिलक ना लगाइए, आप कंठी ना पहनिए, आप खाली जप करने लग जाइए, उसी में उन लोगों का अलार्म चला जाता है कि ये तो कुछ अलग कर रहा है, दैट मीन्स इट इज डिफरेंट। आज ही मुझे एक भक्त के भाई से बात हो रहा था तो वो बता रहे थे किस प्रकार से उनकी माँ जानती हैं कि मांस खाना अच्छा नहीं है, जानती हैं कि ये पाप कर्म है, और ये भी जानती हैं कि हरि कृष्ण करने से उनका लड़का जो भी भक्ति कर रहा है वो भगवान के धाम प्राप्ति करेगा, इसी बात का डर है उनको कि ये भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा या पाप नहीं करेगा। और तो मैं खाली बोल रहा था कि इस प्रकार के अगर विरोध आता है आपकी भक्ति के जीवन में तो उसको सहन करके भक्ति को करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे एंगल से सोचिए, हम भक्ति नहीं करेंगे तो कहां पड़े रहेंगे, भौतिक जगत में, और भौतिक जगत का स्वरूप क्या है, सुख दुख और क्या है, गर्मी सर्दी। ऐसे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहां भगवान बोल रहे हैं क्षणिक उदय। अगर आप शाश्वत समय को कंपेयर करें ना, पूरा कि आप शाश्वत हो तो इस जीवन की उथल पुथल धीरे धीरे करके हम भक्ति करते रहते तो उससे हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। जैसे एक भक्त के बारे में जानता हूं जो एक समय में एकदम रोड पे आ गए थे, और अब भगवान की कृपा से उनको बहुत अच्छा नौकरी मिल गए हैं, बहुत पैसे मिल गए, लेकिन दोनों को सहन करना सीखना पड़ेगा। दोनों को सहन करने का मतलब है जब रोडपति है तो वो रोड पर जप करें, और करोड़पति है तो बंगले में जप करें। आप समझ रहे हैं सुख को सहन करने का मतलब क्या हुआ, अब तो बहुत पैसे आ गए अब बस बंद करो हरे कृष्णा, जब दुख आएगा तब हम हरे कृष्णा करेंगे। सुख सहन करने का अर्थ है कि सुख में भी यही बुद्धि होना चाहिए कि क्षणिक है, हो सकता है अगले दिन फिर मैं रोड पे आ जाऊं, हो सकता है ना, तो रोड पे आऊंगा तब भी कृष्ण मेरे हृदय में है, वो तो नहीं कह रहे अरे अब मैं रोड पे आ गया हूं, जब आप बंगला मिलेगा तब मैं आपके हृदय में आऊंगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। तो रोड में आओ तब भी भगवान मेरे हृदय में है, आप पत्रम पुष्पम फलम तोयों के द्वारा सेवा कर सकते हैं, और आप करोड़पति हैं तो आप वही पत्रम पुष्पम जो भी कुछ है वो चांदी के सोने के उसमें कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में कृष्ण हमें कभी नहीं त्यागते। तो जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति उन्हें हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ। यही चीज भगवान इस बात को बोल रहे हैं अविचल, अविचल मतलब समझते हैं जो इधर उधर हिले नहीं, और इसी बात को भगवान बोलते हैं गुणों को जीतने के संबंध में। आपको पता है वो कैसे भगवान बोलते हैं गुण कैसे जीत सकते हैं, क्या श्लोक है, सगुणा संवितंताम, तो अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति गुण से पार हो जाता है, लेकिन कौन, नहीं माम च यो अव्यभिचारेणा भक्ति योगेना सेवते सगुणान समितितेन ब्रह्मचर्य। अव्यभिचारी भक्ति जो करता है, व्याभिचार का अर्थ क्या होता है, कोई स्त्री का पति है उसको छोड़ करके, या फिर ऐसा कहे उसको छोड़ के दूसरी का संग करे, या फिर वो रहता है उसकी भी सेवा करे और दूसरे की भी सेवा करे, ये ज्यादा अच्छा अर्थ है। अगर मान लो पति को छोड़ दे तो पूरा कष्ट कहलाएगी, लेकिन पति की भी सेवा कर रही है और उसके बाद दूसरे की भी सेवा कर रही है, दूसरे में भी श्रद्धा है, तो ये व्याभिचार कहला जाता है। तो इसको शिला विश्वनाथ चक्रधारकर बोलते हैं बहुत सुंदर, व्याभिचार का अर्थ मतलब सॉरी अव्याभिचार का अर्थ होता है नियमित रूप से की गई भक्ति, रेगुलरली की गई भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ऐसा नहीं कि आज हरे कृष्णा कर रहे हैं कल नहीं कर रहे, परसों कर रहे या फिर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, स्थैर्य के संग नियमित रूप से भक्ति की जाए। दूसरा कृष्ण की ही भक्ति कर रहे हैं, आज कृष्ण की करी और कल उसके बाद हनुमान जी की करी, उसके बाद उसी करी उसकी करी, आदर देना एक अलग बात है, लेकिन श्रद्धा नहीं टिकनी चाहिए, श्रद्धा नहीं डिगनी चाहिए। डिगना समझते हैं आप, डिगने का अर्थ है हिल जाए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे भगवान ये बोल रहे हैं ये सब पे अप्लाई होता है, जो देवता के उपासक हैं वो भी ऐसा नहीं है कि हम सुख दुख से बच जाएंगे, ऐसा होता है। आपको लगेगा शिव जी की उपासना क्या कभी गरीबी में नहीं आते, अगर कभी गरीबी में नहीं आते तो शिव जी के पास जाते क्यों पैसा मांगने, या कभी उनका एक्सीडेंट नहीं होता, सारा एक्सीडेंट क्या कृष्ण भक्तों का ही होता है। बल्कि उसके उल्टा ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, इंद्रगोप, इंद्रगोप नाम का एक कीड़ा होता है और इंद्र, सबको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, केवल भक्ति जो नहीं कर रहा है उसके अलावा, जो भक्ति करता है उसकी कर्म भगवान नष्ट कर देते हैं। तो हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है, भक्त को क्या सोचना चाहिए, एकदम कंप्रेस होके आ रहा है। और ये सत्य बात आप लोगों ने सुना है, रस्सी चली गई और बल नहीं गया, इसका अर्थ समझते हैं, रस्सी को आप जलाओगे तो उसमें जो बल होता है वो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको बल मतलब खत्म करना है तो क्या होगा, कर दीजिए बस उड़ जाएगा, लेकिन बल से पहले तक दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से भक्तों के जीवन में, भक्तों के हृदय में जो भी कर्म है, एक कर्म वासना भी है, वो एक इंप्रेशन के रूप में रहती है। अगर भक्तों के जीवन में पाप भी नहीं खत्म हो रहा है तो मात्र वो केवल आदत की वजह से। मैं एग्जाम्पल इसको देता हूँ, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जैसे एक बार एक भक्त को मुझे रोटी बनाना सिखा रहे थे और मेरी आदत है, मैंने अपनी माँ को दिखाया है, रोटी पे हाथ रखती हैं उसके बाद फिर उसको गर्म करते हैं। उसने बोला नहीं ब्रो, जहाँ हाथ मत रखना रोटी खराब हो जाएगी, फिर हाथ रख दिया। अगर नहीं मैं मत रखना, मैं ठीक है मैं नहीं रखूंगा, फिर हाथ रख दिया। यानी मैं चाहता हूँ कि मैं ना करूँ ऐसा, लेकिन फिर भी हाथ बार बार जा रहा है। लेकिन फिर एक समय के बाद मैं कॉन्शियस हो गया, फिर मैं नहीं रख रहा था। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भक्तों के जीवन में भी जो सुख दुख है, थोड़ा बहुत अपराध की वजह से जो भी आ रहा है, वो भी कुछ समय के बाद भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपराध है या अज्ञान है तो भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, उसको कोई वही होप ही नहीं है। जैसे एक भक्त के बारे में बता रहे थे कि कह रहे थे वो उसे मांस खाना छोड़ ही नहीं रहे वो, लेकिन जब कर रहे कहते यही छुड़वाएंगे जब। और एक्चुअली सत्य बात है, भले ही वो ना छोड़ना चाहे आज, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन भगवान उसको कुछ कहीं से वो सुनेगा, कुछ ऐसा करेगा तो एकदम से भगवान इसको बुद्धि देंगे गलत है, ऐसा मत करो। किसको देंगे, जो हरि नाम जप करता है। पर इसीलिए जो अपराधी है नाम के प्रति, उसको क्या करना चाहिए, नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। तो ये बात यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सुख दुख में उसी प्रकार से समभाव रखते हुए कार्य करते रहने चाहिए जैसे हम लोग ग्रीष्म ऋतु और बरसात की ऋतु में कार्य करते रहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, जब हम लोग नौकरी करने जाते हैं स्पेशली, तो गर्मी में भी करते हैं और बरसात में भी करते हैं, isn't it? तो उसी, और ये भी समझते हैं कि बरसात भले ही हमें लगे कि हमेशा होने लगी, हमेशा नहीं होती। आपने चीज नोटिस करी इस चीज को, जब दुख आता है तो हम लोग सोचते हैं कि तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, सोचते हैं ना, डिप्रेशन होने के कारण यही है। जब दुख आता है तो हम सोचते हैं ये हमारी स्थिति ऐसी रहेगी, और प्राउड होने का कारण क्या है, जब हमें सुख आता है तो हम सोचते हैं ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप सोचिए देवता लोग इंद्र कितने शक्तिशाली, उनको भी पराभव प्राप्त होता है ना, और एक साल दो साल के लिए लंबे लंबे साल तक चले जाते हैं, बेचारे पोस्ट चले जाते हैं। इस प्रकार से आप जीव अपने भौतिक जीवन में देखिए, कोई बिजनेस पर्टिकुलर समय में उठता है, कुछ वही बिजनेस नीचे चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभावित होता है इन सब चीजों से, उसकी चेतना ये होती है कि मैं जिस भौतिक परिस्थिति में हूं ये ऐसी ही रहेगी। ये बहुत बड़ी बेवकूफी, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसके ऊपर एक भक्त बहुत सुंदर बता रहे थे, आप लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, समय रात है, कभी कभी गुप्त अंधेरा होता है तो आपको पूरी वर्ल्ड व्यू दिखाई नहीं पड़ता, रूम में क्या है सारा कुछ क्या है। और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं जब जीवन में बहुत दुख आते, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या कर क्या करो, क्या करना चाहिए, होता है ना सर, और नहीं होता है तो होगा। लेकिन आपका जो मोबाइल है उसमें एक टॉर्च होती है, मिनी टॉर्च, मिनी टॉर्च के द्वारा आप पूरे जगत को आलोकित नहीं कर सकते हो, अपने नेक्स्ट स्टेप को आलोकित कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, समझ रहे हैं मेरी बात, जब आपका टॉर्च है उससे इतना प्रकाश जरूर मिल सकता है कि आपको अगला पांव कहाँ रखना है, वो उसमें गड्ढा नहीं पड़े। और वो क्या है, ये ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का नित्य अंश हूं, मेरा कर्तव्य है या मेरी स्थिति है कृष्ण की सेवा करना। तो इस सिचुएशन में मैं कैसे कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, आप हर परिस्थिति में कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, यही बात भगवान इस बात को बोल रहे हैं। जैसे आप फिर वो एग्जाम्पल लीजिए अर्जुन का, अर्जुन की एकमात्र एकदम तेजस्वी, एकमात्र तो नहीं लेकिन तेजस्वी अभिमन्यु मारे गए, और बहुत गलत तरह से मारे गए, बहुत ही नृशंस तरीके से मारे गए। नृशंस समझते हैं आप, निशस्त का मतलब होता है खुंखार, तो और हाँ खुंखार बोल सकते हैं, बहुत गलत तरीके से बेमानी करके मारे गए। अगर कोई आपस में युद्ध करके मारे होते उतना दुख उन लोग उतना दुख नहीं होता, कैसे 8 या 10 लोगों ने मिल करके उनको मारा था, सात लोग थे। तो इस प्रकार से जो है बहुत दुख हुआ था और एक तरह से अभिभूत भी हो गए थे, बहुत रो रहे थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध करना नहीं चाहा, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर था कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं इस युद्ध को कर रहा हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, दैट इज अ पॉइंट। ऐसे ही हम प्रचार कार्य में आप देखेंगे बहुत बार हमको हार प्राप्त होती है, हार इन द सेंस मतलब रिजल्ट वैसे नहीं आते जैसे हम चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति को करते रहना चाहिए भक्ति हर परिस्थिति में। प्रश्न है थोड़ा जोर से बोलिए, हाँ माइक तो नहीं है, हाँ बोलिए, माइक है लेकिन स्पीकर नहीं, हाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने आप। मतिर न कृष्णे परतः सत्वा मिथो विपद्येत ग्रहवता नाम, ये कहना बिल्कुल सही है कि मनुष्य जीवन में अपने आप ज्ञान नहीं होगा भगवान के बारे में। और ये आप देख सकते हैं जब तक हम सुनते नहीं कि हम शरीर नहीं आत्मा, वो कभी क्लिक ही नहीं करता, कभी हम सोचते ही नहीं इसके बारे में कि ऐसा कुछ ऐसा भी कंसेप्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को सुनना ही आवश्यक है। और आप देखिए बचपन से लेकर के अब तक हम सुनते जा रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने महाराज एग्जाम्पल लिया, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज 2008 तक कितने स्वस्थ थे, बहुत स्वस्थ थे, पूरा एनर्जी थी महाराज की, 1 मिनट में हार्ट अटैक पड़ गया। और महाराज अभी पैरालिसिस में है, बहुत कष्ट में है, फिर भी देखिए महाराज ये जान रहे हैं कि मैं वाणी के द्वारा तो कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ, ठीक है मैं और तरह से ना कर सकूं, हो सकता है मैं भांगी विग्रह की सेवा नहीं कर सकूं तो और कहीं बहुत नहीं कर, लेकिन वाणी के द्वारा तो मैं सेवा कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, लेकिन तिरुभाव दिवस में आप देखना लास्ट ब्रेथ तक प्रभुपाद जी अपनी वाणी से भगवान की सेवा कर रहे थे। या फिर एग्जाम्पल आप तो आप देख रहे हैं कि इतने दुख में भी एक भक्त भगवान की सेवा कर सकता है, यानी आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल महाराज के देखें, इतना दुख में भी भगवान की सेवा करना नहीं त्याग रहे, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि भगवान तो मैंने तो जीवन आपको दिया अपना सेवा करने के लिए, सॉरी मैंने अपना जीवन आपकी सेवा करने के लिए दिया और मुझे इतना कष्ट क्यों आ रहा है। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक भक्त का हमेशा विश्वास होता है सच्चे भक्त का कि भगवान जो भी मेरे लिए कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उदाहरण देते हैं आचार्य गण की, कभी कभी माँ अपने बच्चे को इंजेक्शन लेने के लिए लेके जाती है पोलियो का, तो बच्चा रोता है, लेकिन माँ क्या देख रही है आगे जाकर के जीवन भर के पैरालिसिस से बच जाए, से थोड़ा कष्ट इसको अनुभव कर लेने दो और खुद ही लेके जाती, समझ रहे ना उदाहरण को। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहा है या जो भी सुख आ रहा है वो सब भगवत कृपा से हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए है, स्पेशली जब आप हरे कृष्ण करने लगते हैं, अल्टीमेटली सभी जीवों के लिए है लेकिन पर्टिकुलरली भक्तों के लिए। जब हम सोचते हैं, जब हम सुनते हैं कि एक बार भी नाम उच्चारण करता है तो भगवान की मति हो जाती है कि मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए, तो मुझे कौन है, सोचते हैं हमारा शरीर, और इसको भगवान क्या बोल रहे हैं आगे श्लोकों में, ये शरीर तो अवश्यम भावी है, ये नष्ट होगा ही, ना सतो विद्यते भावो, तो केवल शरीर की रक्षा नहीं कर रहे हैं भगवान, वो तो करेंगे ही, लेकिन मेन प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का प्रोटेक्शन, क्या बोल रहे हैं, सुरक्षा। और चेतना की सुरक्षा का अर्थ क्या है, चेतना कृष्ण में फिक्स्ड अप है, तात्पर्य को देखें। कोई प्रश्न है आपका, पराभव का मतलब होता है हार, देवताओं के लिए जैसे कि मान लीजिए देवताओं का पराभव होता है, मैंने बोला था तो देवताओं का पराभव का अर्थ है जैसे वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया था, और अमेजिंग बात है बड़ी प्राय होता है, मारो 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 ऋषिगण, मतलब मारो 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 खूब मारो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए यज्ञ कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा। और जब वाकई उन्हें मार दिया, क्योंकि वो एक वैष्णव भी थे तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा और ब्राह्मण के पुत्र भी थे वो, अब ऋषि मुनि से भाग गए वहां से, कुछ नहीं करने वाले थे, तो फिर उनको कई साल तक मानसरोवर में शरण लेनी पड़ी पानी के अंदर, क्योंकि पाप जो पर्सोनिफाइड माता जी थी उनके पीछे भाग रही थी, यानी कोई आपके पीछे, कोई माता जी आपके पीछे भागे तो आपको स्विमिंग पूल में चले जाना चाहिए, व्हाटएवर, मानसरोवर में चले जाते हैं, तो वहां पे फिर अच्छा वहां पे क्या है कि अग्नि उनको खाना देने के लिए आते थे यज्ञ का भाग, लेकिन अग्नि को जल में जाने से डर लगता था तो बेचारे भूखे रहते थे, तो वहां लक्ष्मी जी की शरण लेते हैं कमल की नाल में रह करके वहां भजन करते 1000 साल तक। तो ये आप सीख सकते, या फिर आपने सुना है कि बहुत बार तो नहीं, कम से कम एक बार इंद्र जो है वो सूअर बन गए थे, और फिर दुर्वासा मुनि का अपराध करने के कारण उनका सारा ये वैभव चला गया था देवताओं का। तो बल्कि सब गलती इंद्र से हुई थी और सभी देवताओं का वैभव चला गया, असुर लोग शक्तिशाली हो गए, और उसके बाद फिर वो देवासुर संग्राम होता है आगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे अपराध है, वैसे कुछ ना कुछ कारण करके ये पराभव प्राप्त हो ही जाता है। पराभव से अर्थ है मतलब वैभव चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और कोई प्रश्न है? ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि भक्ति करते हैं तब हम महसूस करते हैं कि मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छा हमारे हृदय में आ रही है। ये आ नहीं रही हैं या आपको अब दिखना चालू हो गई? जैसे थोड़ी देर पहले आप रूम को साफ कर रहे थे, उससे पहले रूम साफ लग रहा था ना, उससे पहले रूम साफ लग रहा था, जब आप रूम सफाई कर रहे थे तो आप देख रहे हैं यार गंदगी कहाँ से आ रही है। ऐसा नहीं गंदगी इस वक्त बाहर से कोई ला के डाला है, जब हम सफाई चालू करते हैं तब हमको दिखाई पड़ती है गंदगी कितनी। जैसे जो भक्ति में शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए 4 नियमों का पालन करना बहुत बड़ी सफलता है। हमने मांस छोड़ दिया प्रभु जी, हम भक्त बन गए। अब ये प्रॉब्लम रेगुलर भक्तों के लिए नहीं है कि अरे आज मैंने मुर्गा नहीं खाया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अब हम जो आगे भक्त हैं उनके हृदय में मान लो भोग वासना आ जाती है, तो उसी से वो उसको देख लेते हैं और कहते हैं यार अच्छी चीज नहीं है। आप देख रहे हैं, और ये रिफाइन होता चला जाएगा। जैसे मेरा अनुभव है कि यहाँ हर भक्त का अनुभव होगा कि जैसे वो भक्तों से पहले बर्ताव करते थे, आप 10 साल पहले सोचोगे तो कहोगे कि मैं कितना रूढ़ था भक्तों से। आप समझ रहे, मर्यादा का मैं कितना भंग करता था, मैं कितना स्पेस आउट था, कितना आलसी था, कितना गैर जिम्मेदार था। अब ये सब भी तो अनर्थ है ना, ये तमोगुण रजोगुण के कारण है। हम भक्ति करते रहते हैं तो आप अगर अच्छे से भक्ति करेंगे, हृदय की सफाई होगी, तो आगे जाके देखेंगे अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता था, और फिर 10 साल बाद आप सोचेंगे अरे मैं ऐसा कैसे सोच सकता था, और फिर 10 साल बाद आप सोचेंगे अरे मैं ऐसा कैसे सोच सकता था। तो ये अद्भुत भक्ति का प्रोसेस इज लाइक रिफाइनमेंट एंड रिफाइनमेंट एंड रिफाइनमेंट एंड रिफाइनमेंट। पहले जब शुरुआत में आएगा व्यक्ति सोचेगा अरे पैसा कमाना है मेरे को, बाद में सोचेगा नहीं इच्छा क्यों आ रही है पैसे कमाने की। तो पहले पैसे कमाने की इच्छा थी उसको हम अच्छा मान रहे थे, बाद में पैसे कमाने की इच्छा है उसको हम बुरा मान रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि आपका हृदय शुद्ध हुआ। ये बहुत सूक्ष्म विचार है। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौंतेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपने पिता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसका महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फल स्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ये उत्तरदायित्व के बारे में बहुत सुंदर, पहले मैंने एक भक्त सुना, बोले भक्ति में प्रगति होती है जितनी मात्रा में हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्या उत्तरदायित्व लेते हैं अपनी साधना का, अपनी सेवा का, अपने स्वास्थ्य का, अपने बर्ताव का। अगर आप सोचे हैं जो व्यक्ति नाम अपराध कर रहा है या भक्ति के में अपराध कर रहा है, कितनी मात्रा में वो कम हुए हैं उस इस बात पे निर्भर करता है वो कितनी मात्रा में उत्तरदायी हुआ है। अकाउंटेबल कहना चाहिए, है ना। किसी को 16 माला करना है, हर कल सुबह सबको 16 माला करना है यहाँ पे जो लोग भी हैं, तो हर व्यक्ति को प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि मैं 16 माला कैसे करूं। कुछ लोग चार माला पहले कर लेते हैं, उसके बाद 12 माला करते हैं, कुछ लोग 16 माला बाद में करते हैं, जो भी जिसको भी करना है। तो अगर आप नाम की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इवन जस्ट पहले बात तो क्वांटिटी पूरा करना चाहते हैं, अगर क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आपको उत्तरदायी नहीं होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा कि हम टाइम से सो जाएं, टाइम से उठ जाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें? डज इट मेक सेंस टू यू? दूसरा बात यहां पे हम सीख रहे हैं, आगे जाकर के हम सीखेंगे कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का तरीका क्या है। हमें विधेय आत्मा बनना पड़ेगा, वो आत्मा जो विधि का कार्य, विधि के अनुसार चलती है। विधि का मतलब समझते हैं आप, नियम के अनुसार। नियम का अर्थ मतलब क्या होता है? जो कार्य हमें करने होते हैं। यम का मतलब क्या होता है? जो कार्य नहीं करने होते। तो नियम का मतलब है आपको संकल्प लेके करना पड़ेगा, भले ही अच्छा लगे या ना लगे। सबका अनुभव है कि कभी कभी जब अच्छा लगता है और कभी कभी जब नहीं अच्छा लगता, लेकिन इसीलिए व्रत का पालन किया था। व्रत शब्द का ही अर्थ है आप संकल्प लेके उस कार्य को कर रहे हो। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर आज आप लोग प्रसादम सर्विंग कर रहे थे, अगर आप गेस्ट के रूप में आते तो आप एंजाइटी में होते कि मुझे प्रसाद कब मिलेगा, ये आपका व्रत है। एक्चुअली व्रत नहीं है हमारा, इस कारण से हम एंजाइटी में होते। और हम लोग किस लिए एंजाइटी में थे, कैसे इन लोगों को प्रसाद मिलेगा, दोनों एंजाइटी में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? एंजाइटी दोनों को है, कैसे इन लोगों की मैं सेवा ठीक प्रकार से करूंगा। तो सुख और दुख से अविचल रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम एंजाइटी ना लें। स्पेशली मैं भक्तों के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, एंजाइटी मतलब टेंशन के, हाँ एंजाइटी समझते, एंजाइटी मतलब थोड़ी चिंता करना कि कैसे कार्य होगा, कैसे कार्य होगा। तो ये ठीक है, भक्त लोग इस चिंता से प्रभावित होते हैं, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक कि वो जानते हैं कि अल्टीमेटली भगवान करने वाले और हम केवल अपना कह सकते हैं पार्ट कर सकते हैं, अपना हमारा जो कर्तव्य हम कर सकते हैं, इसलिए वो डिटैच रहते हैं। यानी कि जब आपने कुछ कार्य किया है उसका जो परिणाम आ रहा है सुख दुख के रूप में, उससे व्यक्ति को डिटैच रहना चाहिए। जो भगवान के, मैंने प्रयास किया, भगवान की कृपा से जो मिल रहा है उसमें मुझे समभाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कल जन्माष्टमी में हम ठीक से प्रसाद सर्विंग नहीं कर सके, तो ऐसा नहीं कि हाथ खड़े कर दे हम आज भी नहीं करेंगे प्रभुपाद जी के नंदोत्सव में। डज इट मेक सेंस टू यू? ऐसे मैं खुद अपने बारे में बोलूं तो कल मैं पूरी तरह से विफल हो गया, अपने मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं भक्तों की सेवा ठीक से नहीं कर पाया। दुख होना चाहिए, दुख हुआ भी, बहुत दुख हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेवा करना छोड़ दें। क्या ये सोल्यूशन है? जैसे आप कभी कभी जब करेंगे तो बहुत काम वासना आना चालू हो जाएगी, बहुत सारी, क्योंकि ये क्या है, मैंने तो कुछ उल्टा सुना था, ये तो हमको हृदय शुद्ध होना चालू हो जाता है, वो शुद्ध हो रहा है इसलिए उमड़ रहा है, उसका मतलब नहीं कि हम जब करना छोड़ दें। ये इंपॉर्टेंट बात। हाँ,
उस टाइम जब ऐसा लगता है कि मैं भक्ति सेवा नहीं कर पा रहा अच्छे से, उस टाइम फिर हम क्या करें?
ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे करूं, और बहुत अच्छा है, चाहे आप जब के समय भी सोचते रहे कि मैं कैसे सेवा को अच्छे से करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात को ग्यारहवें स्कंद में बोलते हैं कि भक्त अगर भगवान की सेवा के बारे में सोच रहा है तो भी, और हरिनाम कर रहा है ध्यानपूर्वक नहीं कर रहा तो भी, भगवान खुश होकर के सारा उनके सब खत्म कर दे, तो अनर्थ सब खत्म कर देते। हमारे गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि हम सेवा में अब्जॉर्ब हैं, हमारा मन उधर जा रहा है जब करते समय, तो क्या सही है? तो महाराज ने बोला कि भाई भोग के बारे में सोचने से तो बहुत अच्छा है ना कि आप सेवा के बारे में सोचें। और आखिर हमारे कृष्ण मंत्र का मतलब ही है कि भगवान अपनी सेवा में नियोजित करिए। और ये इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जी की तरह बताएंगे, प्रारंभ में हमको सेवाओं में रुचि होती और बाद में जाकर के आप कृष्ण प्रेम में स्थित हो जाते। तो नेचुरल है, जिन कार्यों को हम करना अच्छा लगता है भगवान की सेवा में, तो वहां पे आपका मन जाएगा, वो कोई उससे मतलब प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, उसको वापस भगवान हरिनाम सुनने का प्रयास कर सकते हैं। बट मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि सुख और दुख भौतिक जगत में भी आता है, मैं नहीं मतलब भगवान बोल रहे हैं, और ये आध्यात्मिक जीवन में अगर आएगा तो उसकी वजह से आध्यात्मिक जीवन को त्यागना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। मान लीजिए कोई हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा, उसकी नौकरी नहीं लगती तो बंद कर देना चाहिए जप कर, डजंट मेक सेंस इज़न्ट इट? और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप महसूस कर लें, कि भौतिक वस्तुओं के द्वारा, आहार निद्रा भय मैथुन के द्वारा मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। ये सुख और दुख जो भी है वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। संतुष्ट क्या, कैसे मिलेगी संतुष्टि, कैसे मिलेगी? अहेतु की अप्रतिहता, बिल्कुल निश्चल भाव से भगवान की सेवा जब मैं करूंगा, और जब वो करूंगा तो मैं हर समय कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, तभी आत्मा सुखी हो सकती। ये आत्मा सुप्रसिद्ध, ये स्टैंडर्ड है सच्चे धर्म का, और इसका पालन करने के लिए हमको पराधर्म का पालन करना पड़ता है। पराधर्म मतलब भक्ति का आश्रय लेना होता है, और फिर यही भक्ति साधन भक्ति साध्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है, शुद्ध भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। प्रश्न है, और श्रीमद भगवद गीता की जय। रूपा।